आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ एक, माता का अंचल। ये शिव पूजन सहाय जी के लेखक हैं और उनके एक उपन्यास का ये अंश है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बालक भोलानाथ है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है इसलिए लेखक ने मैं का इस्तेमाल किया है, और तो जो मैं शब्द में वो अपनी कहानी कह रहा है, बालक भोलानाथ वो बता रहा है उसे कि कैसे उसका जो रिश्ता था वो कैसा उसके माता के साथ था और कैसा उसके पिता के साथ था। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे लेकिन वो माता के पास सिर्फ दूध पीने जाता था और बाकी समय अपने पिताजी के साथ रहता था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ घूमने जाता था, उनके साथ ही सोता था, खाता था, सारे काम वो अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ ही करता था। वो बताता है कि कैसे जब पिताजी उसे खिलाते हैं तो माँ कहती हैं कि आदमियों को बच्चों को खिलाना नहीं आता, मैं खिलाती हूँ, फिर आप देखना माँ के हाथ से बच्चे का पेट भरता है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, माँ बाप का जो प्यार है, स्नेह है, वो पता चलता रहता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि भोलानाथ के सिर में जबरदस्ती उसकी जो मैया है, उसकी जो माँ है, वो जबरदस्ती तेल लगा देती हैं। बच्चा चिढ़ता है और सिसकता हुआ रोता हुआ अपनी पिताजी की गोदी में बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो वहां उसे अपने हम उम्र दोस्त मिलते हैं जिनके साथ वो खेलने लगता है और फिर सारा रोना भूल जाता है। तो पेज नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। पेज नंबर 4 पे यहां हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे, ठीक है। वो बताता है कि कैसे बच्चों के साथ खेलता था और तमाशे करने लगता था। इसके आगे से शुरू करते हैं, सेकंड लास्ट पैराग्राफ से। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदौआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थाले में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीददार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब वो क्या बता रहा है कि कैसे बच्चों के खेल होते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं इसमें ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण संस्कृति का चित्रण हुआ है, तो वहाँ दिखाया गया है कि कैसे गांव में लोगों का रहन सहन कैसा होता है, कैसे पारिवारिक उनका स्थिति होती है, कैसे परिवार के बीच एक आत्मीयता, प्रेम का भाव होता है और कैसे जो खेल होते हैं बच्चों के, रहन सहन का तरीका और बच्चों के खेल किस तरीके के होते हैं वो सब इसमें बताया जा रहा है। तो जो बच्चे हैं वो क्या कहता है कि हम सब मिलकर तमाशे करते थे, नाटक करते थे। क्या खेल, खेल में के खेल क्या खेलते थे कि घर का जो चबूतरा होता था वो उनका नाटक घर बन जाता था, है ना। और जिस चौकी पर स्टूल जिसे कहते हैं उस पे बैठ के जब पिताजी नहाते थे वो उनका रंगमंच यानी स्टेज बन जाती थी। उस पे फिर वो कागज से चांदनी या वो शामियाना जो चादर टांगते ना वो बनाते थे, पूरा एक स्टेज तैयार करते थे अच्छे से और उसे मिठाई की दुकान बना देते थे। अब बच्चों को मिठाई की दुकान तो तैयार हो गई लेकिन उसके लिए मिठाइयाँ कहाँ से आए। तो देखिए कैसे आसपास पड़ी हुई चीज़ों से बच्चे कैसे अपनी कल्पना से क्या क्या मिठाई बनाते हैं। देखिए, ढेले के यानी जो मिट्टी के टुकड़े वो होते हैं गोल गोल टुकड़े, उससे लड्डू बना लेते थे। जो पत्ते गिरते थे पेड़ों के उन पत्तों से वो पूड़ी कचौड़ी बना लेते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ और घड़े जो टूट जाते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे बताशे बना लेते थे। ऐसे करके वो सारी मिठाइयां सजा लेते थे और फिर नकली पैसे भी बनते थे उनके। आपस में ही बच्चे खरीदार बनते थे और आपस में ही दुकानदार। वही लोग खरीद रहे हैं, वही लोग बेच रहे हैं, वही लोग खा रहे हैं। आपस में बच्चे ऐसे खेल खेलते रहते थे और मजे लेते रहते थे। फिर वो कहता है कि बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद, यानी जो उनके पिताजी थे भोलानाथ के, वो भी कभी कभी बच्चों का दिल खुश करने के लिए, उनको बहलाने के लिए जो खेल था उनका, जो नाटक था बच्चों का, उसमें शामिल हो जाते थे, खरीदार बन जाते थे कि हमको भी मिठाई खिलाओ, ताकि बच्चों को और अच्छा लगता था। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जीवनार तैयार करते थे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, एक तमाशा हो गया यानी एक खेल पूरा हो गया, मिठाई की दुकान लगा ली, मिठाई बेच ली, मिठाई खा ली, सब काम कर लिया। आप क्या करते थे, घरौंदा बनाते थे, एक छोटा सा घर जैसा बनाते थे अपना। कैसे करते थे, धूल जो थी ना उसकी मेड़, मतलब धूल को ऐसे इकट्ठा करके एक जगह दीवारें बना देते थे, उस पर तिनके रखते थे जो छप्पर बन जाता था। इससे पता चल रहा है कि गांव के घर कैसे होते हैं और बच्चों के दिमाग में फिर वही छवि बनी होती है कि हाँ घर है तो ऐसा होगा कि मिट्टी के घर, घरों के ऊपर फूस का, लकड़ी का छप्पर पड़ा होगा। फिर जो दातून होती है, जैसे गांव में नीम की लकड़ी है उससे जो दातून करते हैं, उससे वो लोग खंबे भी तैयार करते थे घर के, अपने किवाड़, चूल्हा चौका, सब कुछ ऐसी नकली चीजों से बच्चे बना लेते थे। जो दिए होते हैं दीपक, उनसे कड़ाही बनाते थे। और उनके पिताजी की जो पूजा की आचमनी थी, जो होता ना वो जल चढ़ाने के लिए छोटी सी चम्मच जैसी, उसे कलछी बनाते थे। कड़ाही और कलछी तैयार हो गई है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, पानी को घी बनाते थे, धूल को पिसान यानी धूल को आटा बनाते थे और बालू को चीनी। इस तरह जीवनार तैयार करते थे। जीवनार यानी कि दावत, जो पूरे लोगों की दावत बिठाई जाती है, कई लोगों को बिठा के खिलाया जाता है, वही दावत या जीवनार कहलाती है। बच्चों का आप दिमाग देखिए, कैसे जो आसपास की चीजें हैं कम संसाधनों में, वो कितनी खुशी प्राप्त कर लेते हैं कि जो धूल मिट्टी है उससे आटा बना लिया, रेत को या बालू को चीनी बना लिया और पानी को घी बना के वो सोचते थे हम खाना तैयार कर रहे हैं। हम ही लोग जीवनार करते और हम ही लोगों की जीवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। क्या हुआ, अब बच्चों ने दावत के लिए खाना वाना सब तैयार कर लिया, तो क्योंकि वो आपस में ही खेलते हैं तो आपस में खाना तैयार करते थे, फिर आपस में ही दावत खाने वाले बन के बैठ जाते थे। जैसे पंगत लगा के, लाइन लगा के एक के बाद एक बैठ जाते हैं ना, वैसे ही बैठ जाते थे। जब बच्चों को खेलते हुए भोलानाथ के पिताजी देखते थे तो फिर से उनका मन बहलाने के लिए बाद में पंगत के आखिर में, यानी जब पंगत उठने लगती है सारे लोग, तब वो भी आके बैठ जाते थे जीमने के लिए। जीमना यानी खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। और बच्चे ये देख के हंसने लगते थे क्योंकि बच्चों को इतना समझ में आता है कि जो बड़े लोग हमारे खेल में भागीदारी ले रहे हैं तो ये हमारा मतलब मजाक कर रहे हैं, हमारे साथ हंसी ठिठोली हो रही है, इसलिए वो भी बच्चे भी हंसने लगते थे। और जो घर बनाया होता था उसको बिगाड़ कर फिर वो भाग जाते थे। पिताजी को भी बच्चों का ये मासूमियत, भोलापन अच्छा लगता था तो वो भी हंसने लगते थे और पूछते थे भोलानाथ से, फिर कब भोज होगा, अब दावत कब होगी, मतलब अब खाने को हमें कब मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 5। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदाने की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काट की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुखड़ा निकालने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। ठीक है, तो अब क्या बता रहा है, अलग अलग तरह के अपने खेलों का वर्णन किया है। पहले मिठाई की दुकान लगाई, फिर नकली घर बना के दावत करवाई, अब क्या कर रहे हैं वो बारात का, शादी बारात का एक दृश्य भी खेलते थे बच्चे। ठीक है, कैसे खेलते थे, चबूतरे पर एक तरफ इकट्ठे हो जाते थे और फिर तंबूरा या खाली बर्तन ये सब बजाते हुए जाते थे। और अमोला, अमोला क्या होता है, जो आम का पौधा जब नया नया उग रहा होता है तो जो चार जो पौधा होता है छोटा सा, उसको घिसकर यानी उसके पत्ते अत्ते जो निकल रहे होते हैं उसको निकाल के वो उसकी शहनाई बना लेते थे कि शहनाई बज रही है, बाजे बज रहे हैं और हम बारात लेके जा रहे हैं। चबूतरे के एक कोने से चबूतरे के दूसरे कोने पर पहुंच जाते थे वो बारात लेके। और चूहेदानी, जो चूहेदानी होती है ना, जो चूहे को पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा होता है, उसे क्या करते थे, पालकी की तरह इस्तेमाल करते थे। पालकी में दुल्हन आती है ना, पहले तो पालकी में ही आती थी, अब तो गाड़ियों से आने लगी है, तो उसको चूहेदानी की वो पालकी बनाते थे और समधी बन के बकरे पे खड़े हो जाते थे और एक दूसरे का स्वागत सत्कार होता था। फिर क्या होता था, जब बारात लौटने लगती थी तो उस समय वो जो उनकी पालकी होती थी उस पे लाल ओहार यानी लाल रंग का पर्दा या कपड़ा जैसा ढाक के डाल रहे थे और कह देते थे अब इसमें दुल्हन चढ़ गई है, अब हम वापस दुल्हन को लेके अपने घर जा रहे हैं, दुल्हन ससुराल जा रही है, ऐसे करके खेलते हुए फिर से वापस आते थे। तो बाबूजी उनके क्योंकि सारे खेल देख रहे होते थे तो इसमें भी वो क्या करते थे, ओहार को उघाड़ कर यानी पर्दा हटाकर देखते थे कि चलो दुल्हन का मुखड़ा तो देख लें, दुल्हन का चेहरा तो देख लें। अब बच्चे फिर से हंसने लगते थे और भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोए बोते और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बई हमारी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे थोड़ी देर बाद फिर से इकट्ठे होते थे और फिर सोचते थे अब कौन सा नया खेल खेला जाए, है ना, अब क्या खेलें, अब क्या खेलें। फिर उन्हें एक उपाय आता था कि हाँ अब हम खेती खेती खेलेंगे, खेती करेंगे, क्योंकि गांव के परिवेश के बच्चे थे तो उन्होंने अपने आसपास जो चीजें देखी थी, जैसे देखा था उन्होंने कि गांव में शादी बराते बहुत होती हैं तो उन्होंने शादी का खेल खेल लिया। ठीक है, उन्होंने देखा था मिठाई की दुकानें होती हैं तो मिठाई की दुकानें लगा ली। उन्होंने देखा था कि गांव में दावतें बहुत होती हैं, मिलकर खाने की रिवाज होती है, तो वो खेल भी उन्होंने खेल लिए। और सबसे जरूरी चीज, गांव में जो किसान खेती करते हैं वो सबसे जरूरी चीज होती है, वो बच्चों ने जरूर देखी होती है, इसलिए अब उन्हें इस खेल के बारे में सूझा कि हाँ अब हम खेती करके खेलेंगे। तो उसके लिए भी ऐसी नाटक से तैयार कर लेते थे, चबूतरे पर ही नकली कुआं नकली क्यारियां बना लेते थे और रस्सी को बांध लेते थे, दो बच्चों को ही बैल बना दिया जाता था, जिससे फिर पूरा खेत जोता जाता था, उसमें नकली बीज डाले जाते थे, कंकड़ पत्थर को बीज के रूप में यूज कर लेते थे, इस्तेमाल कर लेते थे, और फिर बड़ी मेहनत से खेत जोए बोते जाते थे। बड़ी मेहनत से क्यों, क्योंकि इन बच्चों ने देखा था उनके पिताजी इतनी मेहनत से खेत में काम करते, तो उन्हें लगता था हाँ खेती का काम बहुत मुश्किल है, तो ऐसे मेहनत करते हुए दिखाते थे। अब असल में किसान को अपनी फसल के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो क्या बच्चे थे, वो तो क्या कह रहे हैं, फसल तैयार होते देर ना लगती, जैसे ही फसल बोई थोड़ी देर में फसल काट लेते थे। ठीक है, जैसे बच्चे कैसे खेलेंगे, कंकड़ पत्थर डाल दिए और कह रहे हैं कि हाँ हमने बीज बो दिए, फिर 2 मिनट बाद कहते थे चलो फसल उग गई, फसल उग गई उसे काट लेते हैं, है ना, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे। तो वो फसल काटने लगते थे और गाने लगते थे, जैसे गांव में लोकगीतों की परंपरा होती है ना, आपस में लोग गाते हैं, बच्चे वही सुनते हैं तो वही सीखते हैं, तो बच्चे भी गाने लगते कि ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजे सो भई हमारी। ठीक है, कि जो क्यारी है वो ऊंचा नीचे करके बोई है और जिसमें उपजेगा अनाज वही हमारा होगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे। कसोरे क्या होता है, एक मिट्टी का बर्तन जैसा समझ लीजिए, एक मिट्टी का कटोरा जैसा आप समझ सकते हैं। तो अब उसे फसल को हम एक जगह रख देते थे और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब वो क्या करते थे, मिट्टी का जो कसोरा है, मिट्टी का बर्तन है, उसमें सूप बना के तैयार करते थे, मिट्टी के दिए तराजू पे रख के राशि तैयार करते थे, यानी तौलने लगते थे फसल को। सब उन्हें पता था सारी चीजें कि खेती में क्या क्या करते हैं, फसल पहले बीज बोए जाते हैं, फसल उगती है तो काटी जाती है, फिर बाजार में जाके तोलती है उसका, हमें फिर उसके बदले में रुपए मिलते हैं, सब वो वही अपने खेल में वही चीजें कर रहे होते थे, दैनिक क्रियाकलाप। अब बाबूजी उनके फिर आ जाते हैं, फिर पूछ लेते अब खेती कैसी हुई इस बार भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। ठीक है, ये है कि बच्चे कैसे जब मेले जाते हैं या खेल खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर समय कैसे कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं। लोकगीतों की परंपरा जो है ये भारत के गांवों में बहुत प्रसिद्ध है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 6 पे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। यानी कि क्या कह रहे हैं वो, अगर जैसे कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी की बारात दिख जाए, उसमें वो जो पालकी है उसमें वो अगर दिख जाए कि कौन दुल्हन है, ये सब वो बच्चों को देखने का एक उत्साह होता है, कौतूहल होता है, अगर वो दिख जाता है उन्हें, तो वो फिर कुछ गाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। रहरी अरहर की दाल, ठीक है। तो रहरी रे रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। यानी बच्चे ऐसे छेड़ते थे कि जो अरहर की दाल है वो पुरानी हो गई है और डोली में जो दुल्हन बैठी है वो हमारी पत्नी हो गई है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खब्बीज की सूरज आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि वो बच्चे ऐसे छेड़ते हुए जाते थे, मजाक मस्ती करते हुए जाते थे रास्ते में कि दाल जो है रहर की वो पुरानी हो गई है, जो ये दुल्हन बैठी है वो हमारी पत्नी हो गई है। तो ऐसे कुछ लोग तो बच्चों का मजाक समझ के छोड़ देते थे, कुछ लोग चिढ़ भी जाते थे। तो वही वो एक घटना बता रहे हैं कि एक बार एक बूढ़े वर ने, यानी जो दूल्हा था वो बूढ़ा था, उसने हमें ढेलों से मारा था और खूब दूर तक खदेड़ा था, यानी बहुत दूर तक भगाया था। अब वो कहते हैं वो जो खूसट खब्बीस, यानी इतना खूसट बुड्ढा था, इतना अक्खड़ था वो, कि उसकी शक्ल सूरत तो हम अभी भी याद करते हैं, अभी भी नहीं भूल पाए हैं। पता नहीं किस आदमी ने अपने लिए वैसा जमाई वैसा दामाद ढूंढ लिया था। घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी, घोड़ा मुहा आदमी यानी घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा। इसमें क्या है, बच्चे की चिढ़ दिख रही, क्योंकि उसने उसे मारा था। तो कह रहा है कि इतना बुरा आदमी न जाने किसने ढूंढ लिया था अपनी बेटी के लिए, और हमें तो आज भी याद है कि कैसी शक्ल थी उसकी, कितनी बुरी शक्ल थी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। अब क्या हुआ, आम का मौसम जब आता है गर्मियों का, तो क्या होता है उस समय आंधी भी आने लगती है, और जब आंधी आती है तो जो आम पक रहे होते हैं वो टूट टूट के पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो वही वो कहता है कि जब आम की फसल उगती थी, आंधी आने लगती थी, तो हम क्या करते थे, जैसी आंधी मतलब आके फिर आधी रुकने लगती थी, तो हम बाग की ओर, जहाँ बाग होता है ना, आम के पेड़ लगे होते हैं, वहां दौड़ते थे। और गोपी आम एक आम की प्रजाति है, वो चुनकर घुले हुए मीठे मीठे आम खूब मन से चबाते थे, बहुत मन से खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगा, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। ठीक है, क्या हुआ, अब एक दिन की वो घटना बता रहे हैं कि ऐसे ही आंधी आई तो ये लोग फिर से आम की बाग की ओर दौड़े होंगे आम खाने के लिए। वहां आम खाने के लिए दौड़े तो क्या हुआ, अब जो आंधी है, आंधी तो पट पड़ गई यानी हवा रुकने लगी, लेकिन आकाश में अचानक से अंधेरा हो गया, काले बादल आ गए थे, बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, आवाजें हो रही थी तेज तेज, और हवा तेज बहने लगी थी सन 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 करके। इसके साथ ही पेड़ झूमते थे, इतना नीचे तक झुक जाते थे कि ऐसा लगता था जमीन को चूम रहे हैं, और बहुत तेज लगता था वर्षा होगी, और मौसम डरावना सा हो गया था। तो बच्चों ने क्या किया, क्योंकि बच्चों को ऐसी जो चीजें सिखा दी जाती है मजाक मस्ती वाली, वही उनके दिमाग में रह जाती है। तो बच्चे गाने लगे मौसम देख के, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी एक पैसे की लाई खरीद के बाजार में चितरादी बिखरा दी है, उधर मत जाओ, उधर चली जाओ बरखा, तुम इधर तो बिलाई है, ठीक है इधर मत आओ। लेकिन बरखा ना रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। ठीक है, बच्चों ने कितना कुछ गाहा, लेकिन बारिश तो होनी थी, बारिश तो हो ही नहीं लगी। बहुत तेज तेज, वो भी मूसलाधार, मूसलाधार यानी जो लगातार पानी गिरता रहता है, बहुत तेज तेज वैसी बारिश हो रही थी। अब बच्चे डर के पेड़ों के जो तने थे, पेड़ों की जड़ थी, उनसे चिपक के खड़े हो गए। कैसे? जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक, अठा यानी कुत्ते कान में एक वो छोटा सा कीड़ा होता है ना, किलनी जिसे हम कहते हैं, वो जैसे चिपक जाती है, वैसे ही वो पेड़ के तने को पकड़ के एकदम चिपक गए थे डर के मारे। लेकिन बरखा जो थी वो जमी नहीं, थम गई, यानी कि रुक गई थी, अब हल्की हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी का सूझता कम था। बैजू उनको चढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। अब क्या हुआ, बारिश जैसे ही बंद हुई तो बाग में बिच्छू नजर आने लगे, क्योंकि बारिश के मौसम में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। सांप बिच्छू जैसे जो खतरनाक कीड़े पकौड़े होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, तो उन्हें भी बिच्छू दिखने लगे। अब ये लोग डरने लगे और फिर भागने लगे। अब वो क्या कह रहे हैं, हम लोगों में बैजू एक लड़का था जो बहुत ही ढीठ था, बहुत ही शैतान था। और जब वो लोग वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी, गाँव के ही कोई व्यक्ति होंगे, मूसन तिवारी जी मिल गए। तो बूढ़े आदमी को चिढ़ाते हुए बैजू क्या बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। जो बच्चे हैं वो दिखा रहा है भोलेनाथ कि कैसे हम उम्र बच्चे जो होते हैं वो कितने, जब अपनी इस कम उम्र में होते हैं तो वो बहुत ही शैतान हो जाते हैं, फिर गांव के सब लोगों को चिढ़ाते घूमते हैं, मनमर्जियां करते करते घूमते हैं, ऐसे ही सारे उनके काम होते हैं। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसर तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अब क्या हुआ, जब एक बच्चे ने गाना शुरू किया, बैजू ने गाना शुरू किया, तो बाकी बच्चे भी उसके साथ गाने लगे, तेज तेज चिल्लाने लगे। तो मूसन तिवारी जो थे उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने उसे उन लोगों को बहुत तेज खदेड़ा, यानी दूर तक भगाया मारा, लेकिन बच्चे आंधी की तरह बहुत तेज से अपने घर में घुस के बैठ गए, भाग गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 दो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। ठीक है, अब क्या हुआ, लड़के जब इधर उधर भागने लगे, नहीं पकड़ में आए, तो जो मूसन तिवारी थे वो चले गए पाठशाला में, बच्चों के स्कूल में चले गए। वहां से क्या हुआ, इन्होंने बच्चों के गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट यानी अब सच में थोड़ी ना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसके लिए, लेकिन इसका अर्थ है कि उनको उनकी शिकायत की गई और चार बच्चों को भेजा गया सिपाही बना के कि उनको लेकर आओ। गुरु जी से शिकायत की थी, टीचर से शिकायत की थी। तो जब वो सिपाही जो थे वो उन्हें लेने आए तो बैजू तो चालाक था, शैतान भी था और चालाक भी था, वो भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया। तो क्या कहता है, हम पकड़े गए और गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली, यानी बहुत डांटा समझाया होगा। बाबू जी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वे गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। ठीक है, अब क्या हुआ, जब बाबूजी ने सुना होगा कि मतलब ऐसा हुआ है भोलानाथ के साथ, मेरे बेटे के साथ, तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए पाठशाला में गए, स्कूल में गए और अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और पुचकारने लगे कि नहीं, जिसे करते हैं ना बच्चे को प्यार करने लगे कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, रो मत। लेकिन भोलानाथ क्या कह रहा है, हम ऐसे लड़के थे ही नहीं जो थोड़ा सा दुलार दिखाओ, थोड़ा प्यार दिखाओ तो हम एकदम से चुप हो जाएं, जब रोना आता था तो रोते ही रहते थे। और इतना रोए कि जो बाबूजी ने, क्योंकि गोद में उठा लिया था तो जो उनका कंधा था वो हमने रोते रोते आंसुओं से गीला कर दिया। फिर बाबूजी ने क्या किया, गुरुजी की चिरौरी यानी कि गुरुजी से प्रार्थना की, विनती की कि मतलब बच्चे को घर ले जाने दो, और वो हमें फिर घर लेके चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। अब जब बाबूजी उसे घर लेके जा रहे हैं तो जो उसके साथ के बच्चे थे, हम उम्र बच्चे, उनका झुंड फिर से मिल जाता है, वो नाचते गाते जाते थे। क्या गा रहे थे, अगले पेज पे देखिए, पेज नंबर 7 पे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। ठीक है, अब क्या गाते हो, गा रहे थे कि माई ने यानी जो माता है, माँ ने गरम गरम पुए बनाए हैं, अब हम पुए खाएंगे जुआ नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबू जी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तार सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगते पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसने फिर से अपने बच्चे देखे, अपने साथ के बच्चे देखे, तो रोना फिर से भूल गया, उसका फिर से मन हुआ इनके साथ खेल लूं। तो वो जिद करके हट करना यानी जिद करके अपने पिताजी की गोद से उतर जाता है और फिर से लड़कों की मंडली में लड़कों का जो झुंड होता है उनके साथ घूमने लगता है, गाने लगता है, जो वो गा रहे होते हैं, जो चिल्ला रहे होते हैं, वही सब करने लगता है। अब मजाक मस्ती करते हुए ही लड़के पहुंचते हैं खेत में। ठीक है, खेत में बहुत सारी चिड़ियां आई हुई थी दाना चुगने के लिए, तो लड़के उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन चिड़ियों को लड़के नहीं पकड़ सकते, चिड़ियां तो फर से उड़ जाती हैं। तो वो बच्चे ऐसे खेल खेलने लगे, इधर उधर चिड़ियां पकड़ने लगे और चिड़ियां उड़ जाती थी। तो जो भोलानाथ था वो खेत से थोड़ा अलग खड़े होके, थोड़ा दूर खड़े होके क्या गाना गा रहा था कि राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, कि राम जी की ही चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, तो तुम चिड़िया तुम ये आराम से खा लो, जब तुम्हारा पेट भर जाए तो चली जाना। ये देखिए, इसी पेज पे चित्र भी बनाया है कि सारे बच्चे चिड़ियों को पकड़ रहे हैं, खेत में चिड़ियां इधर उधर उड़ रही हैं, और भोला जो है वो अलग पेड़ के पास खड़ा होके चिड़ियों को, बच्चों को, सबको देख रहा है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब जहां ये बच्चे थे उनसे दूर ये भोलानाथ के पिताजी और उनके कुछ मित्र और गांव के ऐसे आदमी सब खड़े होके तमाशा देखते, बच्चों की शैतानियां देख के हंस रहे थे कि लड़के कितने शैतान हैं, है ना, अपने खिलौना बनाने के चक्कर में चिड़िया की जान ही ले लेंगे, इतने शैतान हैं। और क्या उन्होंने क्या एक बात कही कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी लड़के और बंदर जो होते हैं इतने शैतान होते हैं कि उन्हें अपनी मस्ती के आगे, अपने मजे के आगे दूसरे की पीर, दूसरे का दुख दर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उन्हें बस अपने मजे करने होते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चेट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब क्या हुआ, जैसे कि इतनी देर में आपको इतना तो समझ में आ गया हो, ये जो बच्चे हैं बहुत ही शैतान है, लड़कों का झुंड बहुत ही शैतान है, अलग अलग शैतानी, अलग अलग खेल, बस पूरे दिन यही चल रहा है। तो अब क्या हुआ, जब खेत से निकल आए हैं तो उन्हें एक चूहे का बिल दिखा होगा, ठीक है, उस पे वो पानी डाल रहे हैं, परेशान करने के लिए चूहों को पानी डाल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, टीला थोड़ा सा ऊपर था, जो बिल था ऊपर की तरफ बना हुआ था, तो जब नीचे से पानी फेंक रहे थे तो बार बार जोर पड़ रहा था, वो थक गए। अब उस बिल में से चूहा नहीं निकला, गणेश जी के चूहे की जगह शिव जी का सांप क्यों कहा गया, क्योंकि जो चूहा होता है उसे हम गणेश जी का वाहन मानते हैं, है ना, और जो सांप होता है वो हम शिव जी का मानते हैं कि शिव जी अपने गले में सांप लपेटे रहते हैं ना, तो वही यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके की भाषा का प्रयोग किया है शिव पूजन जी ने कि गणेश जी के चूहे तो नहीं निकले, उनकी रक्षा उनके बचाव के लिए कौन निकल आया, शिव जी का सांप निकल आया। अब सांप देखकर बच्चे डर गए, रोते चिल्लाते डरते हुए यहाँ वहां भागने लगे, कोई गिर रहा था, कोई कुछ हो रहा था, किसी को चोट लग रही थी, किसी के सिर में सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, गिरते पड़ते यहाँ वहां अपने आप को बचाने के लिए सब भाग रहे थे। भोला भी क्या कहता है कि हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, यानी हम भी इतनी बार गिरे, इतनी चोट लगी कि हर जगह से खून निकल रहा था, और जो पैरों के तलवे थे उसमें कांटे घुस गए थे, तो वो भी छलनी हो गए थे, बहुत चोट लग गई थी, लेकिन हम डरते डरते यहाँ वहां भागे पड़े थे। हम एक सुर से, अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 8, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब क्या हुआ, जैसे वो दौड़ते हुए गए तो सीधे उन्होंने क्या हुआ, घर में घुसे, अब घर में जाकर ही सांस ली। बाबूजी बैठक में ही बैठे थे, घर की शुरुआत में जो बैठक बनी होती है वहां पे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने पुकारा होगा, भोला कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। लेकिन बच्चे ने बात नहीं सुनी और दौड़ता हुआ कहाँ गया, मैया की गोद में, अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गया। मैया चावल अमानिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूछ कर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब क्या हुआ, बच्चा बता रहा है कि मैया जो है चावल अमनिया, अमनिया नहीं, चावल साफ कर रही थी। चावल बीनते हैं ना बनाने से पहले, वही वो चावल साफ कर रही थी। तभी जब बच्चा जो था वो उसके आंचल में, यानी उसकी गोद में जाके छुप गया। अब जब मैया ने देखा कि बच्चा भोलानाथ इतना कांप रहा है, तो वो भी डर गई कि क्या हुआ। वो रोने लगी तो सारा काम धाम छोड़ के अपने बच्चे को पुचकारने लगी, प्यार करने लगी, उसके हाथ पैर दबाने लगी और बहुत ही मुसीबत में पड़ गई कि मेरे बच्चे को आखिर हुआ क्या है। बार बार पूछ रही थी कि क्यों डर रहे हो बेटा, क्या हुआ है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर तोपी गई, घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से स, 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना नहीं चाहते थे पर वे खुलती न थी। हम आंख खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। ठीक है, अब क्या हुआ, जब देखा उसकी माँ ने कि इतनी चोट लगी है बच्चे को, तो हल्दी पीस के हल्दी लगाई उसके घावों पे, चोट पे हल्दी लगाते हैं ना, उसको हल्दी लगाई और बार बार पूछा क्या हुआ। घर में मतलब कोहरा मच गया था, कि हल्ला मच गया था कि बच्चे को हुआ क्या है। और बच्चा रोए जा रहा था, सा 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 सांप भी पूरा नहीं बोल पा रहा था, बस सा सा कह के रोए जा रहा था। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखें चाहकर भी नहीं खुल पा रही थी, होंठ कांप रहे थे। ये सब देख के जो माँ थी उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो प्यार से बार बार अपने बच्चे को गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। हम पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शक्ति के चढ़ावे की छाया न छोड़ी। अब क्या हुआ, क्या बता रहे हैं वो, कि जब पापा आए उन्होंने देखा तो उन्होंने माँ की गोद से हमें लेना चाहा, पूछना चाहा कि बेटा क्या हुआ है। लेकिन उस समय हमने मैया के आंचल का आंचल नहीं छोड़ा, मतलब माता की जो गोद थी वो नहीं छोड़ी, क्योंकि माता के आंचल में, माँ के गोद में एक अलग ही प्रेम मिल रहा था, शांति यानी प्यार और सुकून मिल रहा था, एक हिम्मत मिलती है बच्चे को जो वो नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो यहाँ पे पाठ आपका पूरा होता है। कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, कि बच्चे का अपने पिताजी के साथ बहुत लगाव था, है ना, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़ता है तो अंततः उसे कौन याद आता है, माता ही याद आती है। ठीक है, तो यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। इसके जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको अगले ऑडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।